संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़। 31 दिसंबर 2021 के इस अंक में सुनिए, यूएन महासचिव ने 2022 के अपने नव वर्ष संदेश में आमजन, पृथ्वी और समृद्धि के लिए पुनर्बहाली का संकल्प लिए जाने की लगाई पुकार। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के एक साथ फैलने से संक्रमण मामलों में आई सुनामी। 2021 के अंत तक 40% विश्व आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रहा अधूरा, यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया नैतिक शर्मिंदगी का सबब। और म्यांमार के काया प्रांत में हमले में कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की निंदा। आपको याद दिलाते चलें कि वर्ष 2021 की कुछ अहम खबरों, घटनाओं पर यूएन न्यूज की टीम ने विशेष सामग्री तैयार की है। शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकारों समेत अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने में इस साल के दौरान विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के बारे में विस्तार से पढ़ने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। दुनिया 2022 का स्वागत ऐसे समय में कर रही है जब भविष्य के लिए हमारी उम्मीदों की परीक्षा हो रही है। निर्धनता, असमानता, कोरोना वायरस संकट, कोविड-19 वैक्सीन का विषमतापूर्ण वितरण, हिंसक संघर्ष और जलवायु संकट, अनेक चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने 2022 के अपने नववर्ष संदेश में आम लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए पुनर्बहाली का संकल्प लिए जाने की पुकार लगाई है। महासचिव ने भरोसा व्यक्त किया कि यदि 2022 को हर किसी के लिए संकट से उबरने का साल बनाने का संकल्प लिया जाए तो मानव समुदाय इन परीक्षाओं में कामयाब हो सकता है।
And there are tests that humanity can pass if we commit to making 2022 a year of recovery for everyone.
इसके लिए ये जरूरी है कि वैश्विक महामारी से उबरने के लिए हर व्यक्ति को हर जगह टीके लगाए जाए। महासचिव ने कहा कि अमीर देश वित्तीय सहायता और कर्ज राहत के जरिए विकासशील देशों को समर्थन और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को उबरने में मदद मुहैया कराएं। साथ ही यूएन प्रमुख ने अविश्वास और विभाजन से उबरने, विज्ञान, तथ्यों और तर्क को नए सिरे से महत्व देने, संवाद और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। महासचिव गुटेरेश ने ध्यान दिलाया कि अत्यधिक कठिनाई भरे लम्हे मिलकर एकजुट होने और सर्जन के लाभ के लिए काम करने के विशाल अवसर भी हैं।
Moments of great difficulty are also moments of great opportunity to come together in solidarity.
UN प्रमुख कह रहे थे कि ये अवसर इस आशा के साथ आगे बढ़ने के हैं कि एक साथ मिलकर मानव परिवार क्या कुछ हासिल कर सकता है।
Together, let's make recovery our resolution for 2022 for people, planet and prosperity. I wish you all a happy and peaceful new year.
UN के शीर्षतम अधिकारी ने खुशहाल और शांतिपूर्ण 2022 की कामना करते हुए लोगों, पृथ्वी और संपन्नता के हित में मौजूदा संकटों से उबरने का संकल्प लिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने शुक्रवार को आगाह किया है कि विश्व के अनेक देशों में हिंसक संघर्ष, अंतर सामुदायिक हिंसा और असुरक्षा के कारण बच्चों के लिए विनाशकारी हालात वर्ष 2021 में भी बने रहे। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
वर्ष 2021 के पहले 3 महीनों में गंभीर हनन के मामलों में कुछ कमी दर्ज की गई थी, लेकिन बच्चों को अगवा किए जाने और यौन हिंसा के पुष्ट मामलों में चिंताजनक वृद्धि जारी रही। अगवा किए जाने के सबसे अधिक मामले सोमालिया में सामने आए, जिसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लेक चाड बेसिन में स्थित देशों चाड, नाइजीरिया, कैमरून और निजर का स्थान है। वहीं यौन हिंसा के सबसे अधिक मामलों की पुष्टि DRC, सोमालिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में हुई। पिछले 16 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व और लातिन अमेरिका में 30 से ज्यादा हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के अधिकार हनन के 266,000 मामलों की पुष्टि की है। इन मामलों की पुष्टि यूएन के नेतृत्व में निगरानी व रिपोर्टिंग ढांचे के तहत की गई, मगर अधिकार हनन के मामलों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2005 के बाद से अफगानिस्तान में बाल हताहतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। दुनिया भर में बाल हताहतों के कुल मामलों में से 28,500 यानी लगभग 27% की पुष्टि अफगानिस्तान में हुई है। इस बीच मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में स्कूलों में, अस्पतालों में सबसे ज्यादा हमले होने की पुष्टि की गई है। अक्टूबर में यूनिसेफ ने बताया कि यमन में मार्च 2015 में लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 10,000 बच्चे हताहत हुए हैं, यानी हर दिन 4 बच्चे। यूनिसेफ ने सभी युद्धरत पक्षों से औपचारिक रूप से कार्रवाई योजनाओं को अमल में लाए जाने का संकल्प लेने की पुकार लगाई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 2021 के अंत तक 40% विश्व आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर पाना संभव था, मगर इसे पाने में दुनिया विफल रही है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे एक नैतिक शर्मिंदगी बताया है, जिसकी कीमत लोगों को अपने जीवन से चुकानी पड़ी है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि 2 वर्ष पहले जब लोग नए साल के उत्सव में जुटे थे, एक नया वैश्विक खतरा भी उभर रहा था। उसके बाद से कोविड-19 के कारण 2020 में 18 लाख और 2021 में 35 लाख लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महामारी के कारण मृतकों का वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन नामक वेरिएंट की वजह से संक्रमण मामलों में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है।
I'm highly concerned that Omicron being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases.
महानिदेशक गेब्रेयेसस गहरी चिंता जता रहे थे कि ज्यादा तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के साथ साथ फैल रहा है, जिससे संक्रमण मामलों में सुनामी आ गई है। उन्होंने कहा कि अगर सामूहिक जवाबी कार्रवाई को बेहतर नहीं बनाया गया तो वायरस का नए रूपों में उभरना और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए खतरा पैदा करना जारी रहेगा। स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2021 के अंत तक विश्व आबादी के 40% और वर्ष 2022 के मध्य तक 70% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था। 2021 के अंत तक यूएन एजेंसी के 194 सदस्य देशों में से 92 देश इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि 40% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता था।
In the year ahead, I call for leaders of government and industry to walk the talk on vaccine equity, both by ensuring consistent supply and helping to get vaccinations actually into people.
आने वाले वर्ष में उन्होंने देशों और उद्योग जगत के नेताओं से वैक्सीन के न्यायसंगत वितरण पर अपने वादों को वास्तविकता में बदलने का आग्रह किया है, ताकि टीकों की स्थायी आपूर्ति और लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने म्यांमार के काया प्रांत में हमले में कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की निंदा करते हुए कहा है कि इस घटना के दोषियों की जवाबदेही तय की जानी होगी। मृतकों में 4 बच्चे और एक गैर सरकारी संगठन के 2 कर्मचारी भी हैं। म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। लोकतंत्र के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों का सख्ती से दमन किया गया है, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे ब्यौरे के साथ अंशु शर्मा।
सुरक्षा परिषद ने एक वक्तव्य जारी करते हुए म्यांमार में सभी प्रकार की हिंसा पर तत्काल रोक लगाए जाने का आग्रह किया है। विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार 24 दिसंबर को हुई इस घटना में 4 बच्चे भी मारे गए हैं, जिनमें 2 17 वर्षीय लड़के, 1 किशोर उम्र की लड़की और 1 5 वर्षीय बच्चा है। खबरों के अनुसार लोगों को मारकर उनके शवों को जला दिया गया। 2 मृतक मानवीय राहत कर्मी, गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन के कर्मचारी थे और संगठन ने उनके मारे जाने की पुष्टि कर दी है। बताया गया है कि ये कर्मचारी नजदीक के एक समुदाय में मानवीय राहत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लोईचा स्थित अपने कार्यालय वापस जा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने मानवाधिकारों का सम्मान और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की अहमियत पर बल दिया है। परिषद के मुताबिक सभी जरूरतमंदों तक सुरक्षित व निर्बाध ढंग से मानवीय राहत पहुंचाए जाने के रास्ते खुले रखने जरूरी हैं। परिषद ने कहा कि मानवीय राहत कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों के संरक्षण व उनकी पूर्ण सुरक्षा का ख्याल रखा जाना होगा। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने म्यांमार की जनता के लिए अपने समर्थन को दोहराया है।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। 2022 के लिए शुभकामनाओं के साथ सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।